एक गाल को ऐंठ दे तो दूध आ जाए और दूसरे को ऐंठ दे तो खून। ऐसी वह उम्र थी। पर इन दिनों मैं हवा खाकर मटर गश्ती कर रहा था। इसी अवस्था में गलत आदतों का शिकार भी हो गया था। पीकर फेंकी गई बीड़ियां या सिगरेटों के टुकड़े मैं उठाता और उन्हें पीता। लड़कियों पर लाइन मारता, दातुन करता, शौच के लिए पानी ले जाता। हमारी बस्ती 100-150 घरों की, मेरी आयु के 10-15 लड़के तथा 7-8 लड़कियां, बेहद गर्मी, आवारा कुत्ते, मुरझाए चेहरों के बच्चे, चुट्टा पीने वाली बूढ़ी औरतें, अधगिरे मकान या झोपड़ियां, झूमते शराबी। मन लगाने धूप के दिन थे। उन दिनों मुझे कुछ अधिक समझ नहीं थी, पर उस दिन जो घटित हुआ वह आज भी याद आता है। मैं और संता माए चुंगी पर से माल लेकर आ रहे थे। चुंगी पर 125 रुपये में शराब की बोतल मिलती थी। हम गांव में उसे 150 रुपये में बेचते। अलावा इसके उन बोतलों की दारू इकट्ठी करके उसमें पानी और नौसादर मिलाकर 2-4 बोतलें और ज़्यादा बना लेते। इसके कुछ दिनों बाद हया बहुत काला व्यक्ति था। वह गांव की सोभी पर मरता था। सोभी सवर्ण की लड़की, गोरी। सारा गांव हमें दलित के रूप में जानता था। संता माए सड़कों पर झाड़ू लगाती, जोगवा मांगती, औरतों की मालिश करती, जचकी करती तो दादा गांव की दिया बत्ती करते, हमाली करते, पेपर बांटते, स्कूल के बच्चों के टिफिन बस में रखते, शराब पीकर कहीं पर भी पड़े रहते। सब उन्हें जानते थे। इल्याह्या को देख शरारत करता, देख हरी का रंग, राधा हो गई दंग, हया चिढ़ता। एक बार गांव में किसी का बिछड़ा मर गया, हया उसे उठाने गया। उस वर्ष हया के परिवार को पड़ का हक मिला था। हया कंधे पर बछड़ा लेकर निकला। रास्ते में सोभी गुजर रही थी। उसे देख हया बहुत शर्मा गया। सोभी ने नाक पर रुमाल रख लिया। हया चिढ़ गया अपने आप पर। कंधे पर लटके बछड़े को रास्ते में ही फेंक कर उन्नत मस्तक से निकल जाने की उसकी इच्छा हुई। उसे लगा यह भी कोई जिंदगी है, मृत जानवरों को उठाओ, उसे काटो, खाओ, छी। हया को पहली बार अपने अस्तित्व का एहसास हुआ। ऐसे गंदे कामों के प्रति पहली बार उसे तिरस्कार महसूस हुआ। मुझे डफली के लिए चमड़े की जरूरत थी। मृत पशु का चमड़ा उधेड़ते समय हया बिना वजह चिढ़ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह मौन था, गंभीर था। मृत पशु की आंखों की तरह उसकी आंखें दिख रही थी। हया चमड़ा लेकर निकल गया। हम मृत जानवर के मांस के टुकड़े इकट्ठे कर रहे थे। कुत्तों की भीड़ बढ़ रही थी। गंगा माँ को कलेजा निकाल कर दिया गया। उसी समय काशीबाई बर्तन ले आई, कहने लगी, सरनू जीभ निकाल कर दे दे, तेरे नाना की तबीयत ठीक नहीं है। बीमार आदमी के लिए जीभ का हिस्सा जरूरी होता है। मैं चौपाल पर बैठ गया। हया ने वहां चमड़ा रखा था सुखाने के लिए, जैसे गीला कंबल बिछाया गया हो। गिद्ध और चीलें चमड़े पर चोंच न मारे इसलिए ऊपर मिट्टी फैलाई गई थी। उसे कुत्ते न उठा ले जाएं इसलिए हया पास ही बैठा था निगरानी करते हुए। सोभी अपने खेत को निकली थी। उसका रास्ता इस बस्ती के चौपाल से जाता था। जैसे ही मैंने हया को इशारा किया कि हया चमड़ा उधेरे हुए पशु की तरह दिख रहा था, हया हंसा भी नहीं। बाद में कई दिनों तक जब भी सोभी इस रास्ते से गुजरती तो हया गर्दन नीचे झुकाए बैठा रहता। सोभी के विवाह के समय मड़वे के नीचे झाड़ू लगाते हुए मैंने हया को देखा है। सोभी की शादी में बारात के साथ साथ सर पर गैस बत्ती लेकर जाते हुए मैंने हया को देखा है। सोभी पति के साथ जब ससुराल गई तब मैंने हया को गर्भवती कुत्ती की तरह स्टैंड पर जगह ढूंढते हुए देखा है। मधुमक्खियों के छत्ते को अगर कोई पत्थर मार दे या छत्ता नष्ट कर दे तो मधुमक्खियां जैसे भिनभिनाने लगती है और किसी अन्य पेड़ की तलाश में निकल जाती है, वैसे ही मैंने हया को उस दिन घर की ओर जाते हुए देखा। पहली बार ससुराल जाने वाली नाजुक लड़कियों को इस स्टैंड पर मैंने देखा है। गर्भवती होकर मायके लौटते हुए उन्हें इस स्टैंड पर मैंने देखा है। सेवंता इस स्टैंड पर आई थी। सेवंता सबसे गले लगकर रो रही थी। यूँ हम दोनों भी चाह रहे थे कि बाहों में बाहें डालकर खूब रो लें। सोच रहा था कि सेवंता का पति मर जाए और मैं उसे अपनी पत्नी बना लूँ। सेवंता पालागन कर रही थी। यूँ मैं रोज बस की प्रतीक्षा करता रहता, पर उस दिन पहली बार सोच रहा था कि बस ना आए, सेवंता यहीं रुके, पर बस आई, सेवंता गई। परछाइयाँ सूर्य की विपरीत दिशा में झुकी थी। सेवंता कहती, तेरे नाम के कारण बदनाम हो गई हूँ, अब या तो तुम्हारे घर में घुसकर नाम कमाऊंगी या कुएं में गिरकर। सेवंता निर्जीव बस की तरह चली गई। मैं बस स्टैंड के पास यूं ही खड़ा रहा। जिंदगी के इस रास्ते पर जिंदगी ही हमाल की तरह लगती। अब रोज का दिन रिक्त बस की तरह कूंचता। किसी के लिए जीना, यह भाव ही जिंदगी को जीवंतता प्रदान करता है। उस दिन काका के घर जाना था। काका के पिता बीमार थे। मसा माँ ने सवेरे ही नहा लिया, नागी के बाल ठीक ठाक कर लिए, मुझे भी सजाया गया। काका के घर जाना है, इस कल्पना से ही हम सब खुश हो गए। काका के माँ बाप तथा पत्नी देखने के लिए हम उत्सुक थे। काका के घर अतिथि बनकर जाएंगे, इसलिए बहुत हर्ष हो रहा था। माँ तो जैसे ससुराल जा रही थी। सच धज कर एक चारपाई पर काका के पिता सिद्धरामप्पा सोए हुए थे। उन्हें कौन सी बीमारी थी पता नहीं। मसा माँ ने सिद्धरामप्पा के पैर छुए, बहू की तरह। बूढ़ा खांस रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। मैं, माँ, नागी चारपाई से दूर थे। घर में तारा माँ बीड़ी पीती बैठी थी। कल्लुना खाना खा रहे थे। बड़ी माँ काशी बाई हम सबको घूर घूर कर देख रही थी। काका घर में कहीं छिपे बैठे थे। काका की कोठी और हमारी झोपड़ी, कोई तुलना? इतनी बड़ी कोठी में रहने वाले काका हमारी झोपड़ी में क्यों आते होंगे? माँ, नागी तथा हम सबको बेहतरीन कपड़े पहनने के लिए मिल जाएं तो सचमुच माँ इस बड़ी माँ से अधिक खानदानी दिखेंगी। क्या कभी हम लोग ठीक ठाक पहन और खा सकेंगे? क्या कभी पेट भर मीठी चीजें खा सकेंगे? इस काले पत्थर की कोठी से हमारा कौन सा अनैतिक संबंध है? इस कोठी के दरवाजों से हमारा कहाँ संबंध है? इस पटेल की हम कौन सी संतान हैं? पटेल से जन्म लेकर भी इस कोठी में हमें क्यों नहीं रहने दिया जाता? ये खानदानी दीवारें क्यों नहीं स्वीकार करती मुझे? यह कोठी मौन क्यों है? यह गूंगी क्यों हो गई है? इसकी जीभ कहाँ लापता हो गई है? काका की पत्नी ने चाय दी। उसके माथे पर त्योरियां चढ़ी हुई थी, केवल गुस्से से देख रही थी। लोहे के बर्तन में 3 कप चाय उड़ेली गई। मैं वह बड़ा बर्तन उठा नहीं पा रहा था, हाथ कांप रहे थे। उससे चाय पी नहीं पा रहा था, पर पी गया। माँ को पीतल के गिलास में चाय दी गई। नागी चाय के लिए रो रही थी, पर वह इतने बड़े बर्तन से चाय कैसे पी सकती थी? मसा माँ को काका के घर की चाय मिल गई। काका के घर प्रवेश मिला। काका के पिता के पैर वह छू सकी। काका की पत्नी ने खुद चाय बनवा कर दी। मसा माँ को ये सारी बातें कितनी महत्वपूर्ण लगती। बड़े अभिमान से वह सब पूरी बस्ती को कहती। मुझे अक्सर उनसे सुनी एक कहानी याद आती। एक थी चमारिन, उसे जाना था बाजार। सज धज कर निकली, पर नारियल का तेल नहीं था बालों को सजाने के लिए, इसलिए उसने मृत पशु की चर्बी गला कर लगवाई। चमारिन निकली बाजार में मांग भर कर, पर पशु की चर्बी लगाने के कारण सिर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वह खरीद फरोख्त कर रही थी। सिर पर मक्खियां भिनभिनाने के कारण सारे लोग उसके सिर की ओर देख रहे थे। गाँव के पटेल ने भी उसकी ओर गौर से देखा। चमारिन ने समझा, पटेल मेरी ओर देख रहे हैं, मेरी ओर आकृष्ट हुए हैं। वह भीतर ही भीतर बहुत खुश हुई। रात में वह घर नहीं गई, पटेल के घर गई। पटेल की पत्नी ने जूठन परोसी। रात में पटेल की कोठी के सामने ही सोई। सोच रही थी कि पटेल रात में आएंगे, उठाएंगे। वह सो गई। पटेल के कुत्ते को उसके सिर पर की चर्बी के गंध का एहसास हुआ। वह सूंघते हुए वहां आया, उसके बाल खींचने लगा। चमारिन को लगा कि पटेल ही आए हैं। नींद में खुश होकर कहने लगी, छोड़ो भी, जबरदस्ती क्या है, मैं तो आई हूँ। उसलिए अक्सर माँ मुझे या नागी को काका को बुला लाने के लिए भेज देती। हम डरते, काका 10-20 की बैठक में बैठते थे, उन्हें कैसे संदेशा दें? माँ कहती, धीरे से काका की चप्पल चुरा कर ले आओ। ठीक है, कहकर हम निकलते, पर हिम्मत नहीं होती। काका जब तक नहीं आते, माँ खाती नहीं थी, प्रतीक्षा करती रहती। काका 4-4 दिन नहीं आते थे, माँ छटपटाती, सोचती, यह भी मुझसे ऊब गए हैं क्या? काका दलित बस्ती में आने से घबराते, बस्ती के और लोग क्या कहेंगे इससे भय खाते। हमारे घर आते समय 2 को साथ ले आते, अकेले आते तो बंदूक के साथ। काका आए कि माँ रूठ कर बैठ जाती। काका समझाते, मनाते, व्यस्तता के कारण आ न सका ऐसा कहते, अनेक कारण बतलाते, फिर दोनों हंसने लगते। काका हमारे घर में पूरी तरह रमते नहीं थे। माँ काका से डरती थी। एक के बाद एक 6 बेटियां हुई, लड़का नहीं। माँ को बेटा चाहिए था और आखिर में लड़का हुआ। माँ ने झगड़ना शुरू किया। काका बात को टालते, माँ कहती, तेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे नाम पर कुछ लिखा दे, 6-7 बच्चे जने हैं तेरे साथ मैंने। झगड़े के बाद से काका घर आते ही नहीं थे, जनी के घर जाकर रुकते। जनी काका की पहली रंडी, गोंदली जमात की। काका ने उसे शुद्ध कर लिया था, उसके गले में लिंग भी डाल दिया था, उसे गुरु भी दिला दिया था। वह लिंगायतों की तरह रहती, सिवाय नमः कहती। काका का आना जब बंद होता तो माँ का गुस्सा और चढ़ता, वह चिढ़ती। एक बार माँ जनी के घर में घुसकर जनी को पीट चुकी थी और एक बार तो वह बम्बई भी चलती थी। कमलाक्का उन्हें बीच रास्ते से वापस ले आई थी। वह अगर गई होती तो आज हम माँ की भड़ुएगिरी करते शायद। अंततः काका ने माँ के नाम पर 2 एकड़ जमीन कर ही दी। संता माए जचकी करती। गांव की किसी स्त्री का पेट दर्द होने लगता तो उन्हें बुलाया जाता। संता माए जाती, कुछ अनाज मिल जाता। रात में किसी भी समय बस्ती पर लोग आते, आवाज देते। संता माए नींद से उठती, रात भर जचकी के लिए जागती। सवेरे मैं खुद को अनाथ महसूस करता। संता माए गर्भवती स्त्रियों के पेट पर तेल लगाकर मालिश करती। भीतर बच्चा सीधा नहीं होता तो उसे मालिश से सीधा करती। भीतर हाथ डालकर बच्चे का सिर पकड़ती, बच्चे को खींच कर बाहर निकालती। मैं देखने जाता तो यह पुरुष है कहकर मुझे भीतर छोड़ते नहीं थे। प्रसूति के बाद संता माए का आंचल अनाज से भर जाता। चूड़ियों तथा ब्लाउज के लिए पैसे दिए जाते। इस काम से निपटकर जब संता माए घर लौटती तो मैं उन्हें टोकरी देता, आंचल का अनाज वह उसमें डालती। न किसी को छूती, न किसी को छूने देती। कंगन फोड़ डालती, मसा माँ पानी गर्म करती, फिर संता माए सिर पर से नहाती। घर में जर्मन के 2 कड़े थे, उन्हें हाथ में डाल लेती। कंगन पहनती तो समझ लेते कि अब किसी की प्रसूति की बारी है, फिर कंगन फोड़ डालती। संता माए का पति जब गुजर गया तब मैं खाना खा रहा था। किसी ने खबर दी, संता माए जोर जोर से रोने लगी। संतति नहीं हो रही थी इसलिए पति ने उन्हें छोड़ दिया था और दूसरा विवाह कर लिया था। बच्चे हुए, संता माए झोपड़ी में रहने लगी। आज पति की मृत्यु की खबर सुनकर वह रोने लगी। इस बीच मसा माँ भी आई, दोनों और रोने लगी। नागी निर्मी भी रोने लगी। दादा हमाली कर रहे थे, वह भागते हुए आए। हमाली से इकट्ठे पैसे संता माए को दे दिए। उसी बस से संता माए पति की अंतिम क्रिया के लिए निकल गई। शाम को दादा चावल लेकर आए, हम दोनों ने पकाए खाए। उस दिन दादा ने शराब नहीं पी, मुझे निकट लेकर सो गए। मुझे जन्म देने वाले पिता की तरह मुझे दादा लगे, पर हम दोनों एक ही रक्त के लग रहे थे। दादा के प्यार में किसी भी धर्म की गंध नहीं आ रही थी। संता माए पति की अंतिम क्रिया और अन्य सारे कर्म कांड करके लौटी। उस दिन जैसे ही वह बस से उतरी, दादा ने उन्हें चाय पिलाई। संता माए अपने साथ वसु मामा को ले आई थी। वसु मामा संता माए की सौत का लड़का, पारा में शिक्षक है, 2 दिन के लिए बुला लाई थी। वसु मामा को साथ ले आने के कारण संता माए ने दादा से कहा कि वह अगले 2 दिन घर ना आए, दादा स्टैंड पर ही रहते। वसु मामा बाहर निकलते कि दादा धीरे से आते, खाना खाकर निकल जाते। एक दिन दादा की स्थिति रंगे हाथ पकड़े हुए चोर की तरह हो गई। संता माए आतंकित हो गई। वसु मामा ने पूछा, ये सज्जन कौन है? संता माई ने कहा, हमारी पहचान के हैं, इनका कोई नहीं है, हमारे ही पास रहते हैं, हमाली करते हैं, परदेसी हैं। दादा अध पेटे ही वहां से खिसक गया।